नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए अपराध कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। 5 दिन के गतिरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की। और थाईलैंड में भारत के पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में पहला पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सच्चा सामाजिक न्याय है।
एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
श्री मोदी ने कहा कि देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगा।
जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अपराध कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को भी धन्यवाद और बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए अपराध कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका अनुसरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, उनके कौशल को विकसित करने, उन्हें रोजगार देने, उनके उत्पादों को खरीदने की प्राथमिकता देने और बाजार की सुविधाएं प्रदान करने से दिव्यांगजनों के नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपनी दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण स्वरूप कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। ये अभियान इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं।
आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष का विषय समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। सुगम्य भारत अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है।
पिछले 9 वर्षों में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए समावेशी विकास करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। हजारों सरकारी इमारतों और परिवहन सुविधाओं के नवीनीकरण से लेकर सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और सुलभ टीवी सामग्री सुनिश्चित करने तक यह अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए आधार तैयार कर रहा है। आज सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों में रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्प डेस्क और लिफ्ट ब्रेल और श्रवण प्रणाली से सुसज्जित हैं। लगभग 709 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह जबकि 4000 से अधिक स्टेशनों को आंशिक रूप से दिव्यांगता अनुकूल बनाया गया है। लगभग 6% बसें पूरी तरह से और लगभग 30% को आंशिक रूप से दिव्यांगता अनुकूल बनाया गया है। वहीं इस पहल के तहत 1000 से अधिक दिव्यांगों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है। पल्लवी परमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर कल भारतीय नौसेना दिवस सहित कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए 5 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगे और आदिम ओवार जरपा जाहिर का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह 12वीं सदी में पुरी में निर्मित जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सरकार और विपक्ष के 5 दिन के गतिरोध समाप्त होने के बाद आज सामान्य रूप से शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह के विरुद्ध कथित रिश्वत के मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाने को कहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्य दलों के सदस्यों ने शोर शराबा किया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस मुद्दे को उठाया और इस मामले में राज्य पुलिस की मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना में 5 लोग मारे गए हैं और 20 लोग घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे का विरोध करते हुए राज्यसभा से कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है।
देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत जरूरी है। एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन MPs को होता है। संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है। पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये अपोजिशन MPs का बड़ा नुकसान हो रहा है और देश का तो नुकसान है ही।
श्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को तथा राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की है। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चौहान ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,310 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस सरकार ने लागत पर 50% लाभ तय करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और मैं एक बानवी मान्य महोदय दिखाना चाहता हूँ। आप MSP की बात कर रहे हैं, धान का MSP जब उधर की सरकार थी तो 1310 रुपया था, बढ़ाकर 2300 रुपया क्विंटल किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
श्री चौहान ने कहा कि ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे की कीमत 1,250 रुपये से बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 4,269 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत में लगभग 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है।
लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं, ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर के वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचेगम के जंगलों में जारी आतंकरोधी कार्रवाई में आज सवेरे एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने कल देर रात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके में अभियान शुरू किया था। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जंगलों में अभियान जारी है और आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी प्रवेश और निकास को सील कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP16 में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रति भारत के व्यापक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। सूखे से निपटने पर मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान श्री यादव ने सूखे से निपटने की भारत की टिकाऊ रणनीतियों का उल्लेख किया। COP16 के मंत्रिस्तरीय सत्र के अपने संबोधन में श्री यादव ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर के क्षरित भूमि की गुणवत्ता सुधारने के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई।
It was during India's presidency at COP14 that became a pivotal moment in our journey. We were proudly presented our commitment to restoring 26 million hectares of degraded land by 2030 and announced the setting up of a center of excellence on sustainable land management in India to promote a scientific approach towards land degradation issues and to help India and share India's expertise with other countries.
इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम सोमवार को असफल हो गया। इसराइल ने संघर्ष विराम समझौते के बाद लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हिजबुल्ला ने अमरीका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए समझौते के कथित इसराइली उल्लंघनों के जवाब में मिसाइल दागे। हमला माउंट डोव के आसपास के क्षेत्र में हुआ, जो एक विवादित क्षेत्र है जहां लेबनान, सीरिया और इसराइल की सीमाएं मिलती हैं। 60 दिवसीय युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला और इसराइल की सेना की वापसी अनिवार्य थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में अमूल्य योगदान दिया। भारत के पवन कंपेली ने कल थाईलैंड के बैंकॉक में 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। ये एशियन ई स्पोर्ट्स खेलों में भारत का पहला पदक है। पवन ने इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी को 2-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 5 दिन के गतिरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की। और थाईलैंड में भारत के पवन कांपेली ने एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में पहला पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।